उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, मन और चित्त की अशुद्धि का नाश कैसे हो, अशांति का नाश कैसे हो, यह एक प्रश्न है हम सभी के सामने। तो मन और चित्त की क्रियाओं पर यदि ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट मालूम होता है कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता हम अनुभव करते हैं वे न मिलें तो अशांति मालूम होती है। विविध प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाओं की उत्पत्ति मात्र से अशांति की पीड़ा होती है। कामनाओं का उत्पन्न होना, फिर उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करना, उस प्रयास में कभी सफलता कभी विफलता, ऐसे तो होता ही है। उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति, ये तीनों ही घटनाएं मानव जीवन में दुख पैदा करने वाली होती हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर ऐसा देखा गया है कि मनुष्य यदि कामनाओं से मुक्त है तो वह अपनी स्वाभाविकता में स्थित रह सकता है। जब तक किसी प्रकार की कामना उत्पन्न नहीं हुई तब तक उसका होमियोस्टेसिस बना रहता है, शांति बची रहती है, सुरक्षित रहती है। परंतु जिस समय उसमें किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो गई, कोई संकल्प बन गया, कोई कामना जग गई, तो तत्काल ही उसकी शांति भंग होती है। उत्पत्ति मात्र से ही व्यक्ति अपनी स्वाभाविकता से हट जाता है, मस्तिष्क में एक प्रकार का टेंशन उत्पन्न हो जाता है। मैंने ऐसा अनुभव करके देखा है कि जिन व्यक्तियों के जीवन में परिस्थितियां अनुकूल हैं, वे कामनाओं की उत्पत्ति से बचने की अधिक चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है ऐसी कोई बात मन में उठी तो झटपट उसको पूरा करने के प्रयास में लग जाते हैं। परंतु वे यदि जीवन के विज्ञान पर दृष्टि डालें तो उन्हें इस बात का पता चलेगा कि कामनाओं की उत्पत्ति मात्र से जिस शांति में हलचल पैदा हो गई, जो स्वाभाविक अपनी दशा थी वो बिगड़ गई, फिर उसकी पूर्ति अपूर्ति के प्रयास में तो और भी अधिक प्राण शक्ति का ह्रास होता रहता है। साधक समाज के लिए अनुभवी संतजनों की सलाह ये है कि अगर मन और चित्त को शांत और शुद्ध रखना चाहते हैं, आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो कामनाओं के फेर में मत पड़िए। कुछ भाई बहन ऐसा सोचते होंगे कि किसी प्रकार का संकल्प ही नहीं रहेगा, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो जीवन क्या रहेगा। हमारे वर्ग के लोग इस तरह की चर्चा कर देते हैं, तो उसका अर्थ ये है कि जीवन की मांग, जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य और उठती हुई कामनाओं का अंतर उनको मालूम नहीं है। मांग तो कहते हैं उसको कि जिसकी पूर्ति अनिवार्य है, जैसे परम शांति की मांग, अमर जीवन की मांग, परम प्रेम के रस की मांग, तो इसको जीवन की मांग कही जाती है। जिनका अस्तित्व सदैव के लिए विद्यमान है, ये अविनाशी तत्व हैं, इनकी आवश्यकता जब जगती है मनुष्य के जीवन में तो उससे न अशांति होती है, न दुर्बलता आती है, न असमर्थता आती है, न पराधीनता आती है, ये सब नहीं होता। परंतु अपने से भिन्न जो पर के प्रति आकर्षण होता है, दृश्य के प्रति अपना खिंचाव होता है, उनकी कामना जगती है तो उसमें आसक्ति बनती है, पराधीनता बनती है, अशांति उपजती है। इसलिए प्राप्त सामर्थ्य के सदुपयोग की सलाह दी गई, अप्राप्त परिस्थितियों के चिंतन से बचने के लिए कहा गया। इतना अंतर है। तो पहला कदम क्या होगा इस दिशा में मन और चित्त की शुद्धि और शांति के लिए, कि जीवन को बहुत ही संयमित और नियमित बनाना चाहिए। पहली बात होगी, बहुत ही स्थूल स्तर से आप साधना आरंभ करना चाहें मन और चित्त की शुद्धि तथा शांति के लिए, तो एक कदम अवश्य ही सबसे पहले ये उठाना होगा कि जीवन को संयमित और नियमित बनाया जाए। शरीर है और थोड़ी थोड़ी देर पर उस शरीर की कुछ आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, तो जैसे जल चाहिए कि कुछ खाद्य पदार्थ चाहिए, तो सचमुच शरीर के लिए जितना हितकर है जिस मात्रा में और जिस रूप में, उतना शरीर की सेवा की दृष्टि से उसको अर्पण कर देना, इसमें दोष नहीं है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल किए बिना, मन की विकृति पर ध्यान दिए बिना, यदि स्वाद के सुख के लिए खाना पसंद किया व्यक्ति ने, तो वो अशांति और विकृति से बच नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को सुनाया कि भाई अगर ऐसा करोगे कि स्थूल शरीर की पुष्टि के लिए अगर बच्चों को रूखा सूखा खाते हुए देख करके भी स्वयं अपने आप इस प्रकार का भोजन ग्रहण कर लोगे, तो चित्त अशुद्ध हो जाएगा, मन विकृत हो जाएगा। स्थूल शरीर तो पोषित हो गया, उसमें बल आ गया, लेकिन इस व्यवहार से, इस कठोरता से चित्त अशुद्ध हो गया, मन विकृत हो गया, शरीर के प्रति बहुत घना मोह पैदा हो जाएगा। तो शरीर को और मन को, चित्त को, बुद्धि को, सबको शुद्ध रखने के लिए संयमित नियमित होने की आवश्यकता है। और संयम नियम के अर्थ में इन सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दृष्टि से शरीर के भरण पोषण की आवश्यकता और उसमें भी हृदय की उदारता सरसता को सुरक्षित रखते हुए इनकी जितनी सेवा करते बने उतने भले कर दीजिए। ऐसा नहीं कि स्थूल शरीर के पोषण के लिए सूक्ष्म शरीर को विकृत बना दिया, मन को खुश करने के लिए स्थूल शरीर को रोगी बना दिया, ऐसा होता है कि नहीं जी? मन को खुश करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देना, तो मन को खुश करने के लिए तन को रोगी बना देना, और तन को पुष्ट करने के लिए मन को विकृत बना देना, यह साधना नहीं है, इसमें अशुद्धि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से साधन के आरंभ में ही अपने लोगों को शरीर की सेवा में बहुत ही सावधानी से संयमित नियमित होकर के चलना चाहिए, और इसकी सुरक्षा में, इसकी सेवा में किसी प्रकार की आसक्ति न रखते हुए प्रकृति की संपत्ति इसको मान करके इसके साथ सही व्यवहार भी करना चाहिए और इसका ठीक उपयोग भी करना चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात देखें, संकल्प उठते हैं, कामनाएं उदित होती हैं, तो पर के प्रति जो आकर्षण होता है व्यक्ति का, उसी को कामना कहते हैं। पर के प्रति आकर्षित होने का कोई कोई आधार मानव जीवन में नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो स्व नहीं है, जो पर है, उसके साथ कभी भी ना संतुष्टि होगी, ना सदा के लिए संयोग रहेगा, ना उससे अपना कोई उपकार होगा। इसके विपरीत यदि उठते हुए संकल्पों का मैं समर्थन कर दूं, तो संकल्पों का समर्थन करते ही गतिशीलता आरंभ हो जाती है। बुद्धि जो है वह उसी कामना पूर्ति की दिशा में सोचना आरंभ कर देती है, और सारा व्यक्तित्व जो है वह बहुत ही गतिशील हो उठता है उसी कामना पूर्ति के फेर में। परिश्रम आरंभ हो गया, विविध प्रकार से किससे सहयोग लेना होगा, कहाँ जाना होगा, किसको कहना होगा, अपना मूल्य घट जाता है, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का मूल्य बढ़ जाता है, अशांति बढ़ती चली जाती है, गतिशीलता तीव्र होती जाती है और प्राकृतिक विधान से कभी वह संकल्प पूरा हो गया तो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को बड़ा सुख मालूम होता है, बड़ा सुख मालूम होता है। फिर क्या होता है कि जिन व्यक्तियों से सहायता मिल गई कि इन्होंने मेरे इस संकल्प की पूर्ति में बड़ी मदद कर दी, तो उन व्यक्तियों का महत्व जीवन में आ जाता है, उनकी पराधीनता अपने में आ जाती है, उनकी 10 गलतियों में अपने को शामिल करने के लिए आदमी तैयार हो जाता है, क्योंकि संकल्प पूर्ति में मदद किया तो अपना मूल्य घट गया, तो व्यक्ति के प्रति आसक्ति पैदा हो गई। फिर वस्तु में सुख बुद्धि उपजती है, ये है भूल, वस्तु में सुख नहीं है, लेकिन संकल्प पूर्ति के फेर में पड़े हुए व्यक्ति को वस्तु बड़ी सुखद दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा सुख है, ये मुझे मिल गई, मुझे बहुत मजा आया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं भाई, उस वस्तु में तो सुखद दुखद कोई बात नहीं है, लेकिन संकल्प के उठने से तुम्हारे मस्तिष्क में, स्नायु में जो टेंशन पैदा हुआ था, थोड़ी देर के लिए वह टेंशन थोड़ा सा ढीला हो गया, मस्तिष्क में एक तनाव पैदा हो गया था, जैसे ही कामना उत्पन्न हुई मेंटल इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया, संतुलन थोड़ी देर के लिए उद्वेलित हो गया, उसके बाद बहुत प्रयास करने से अगर इच्छा पूरी हुई तो इच्छा की पूर्ति काल में जब तक कोई नई इच्छा उत्पन्न नहीं हुई उतनी देर के लिए मानसिक स्थिति स्वाभाविक बन जाती है, उस स्वाभाविकता में आदमी को आराम मिलता है। तो ये आराम जो है ये किसका है, प्राप्त हुई वस्तु का आराम नहीं है, मदद देने वाले व्यक्तियों के संयोग का आराम नहीं है, ये आराम तो आपके भीतर ही पैदा हुआ, स्नायु में तनाव हुआ था कामना की उत्पत्ति से, और कामना पूर्ति काल में थोड़ी देर के लिए व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो कामना रहित होता है, आराम जो मालूम होता है ये कामना रहित दशा का आराम है, वस्तु का मूल्य नहीं है। भूल से व्यक्ति उस वस्तु के महत्व को मान लेता है कि ये बड़ी सुखद है, फिर क्या होगा कि अब प्राप्ति के बाद अब उसकी सुरक्षा की चिंता आरंभ होगी, उसके संग्रह का लोभ आरंभ होगा, तो ना उस वस्तु का उपयोग वो खुद एक शरीर के लिए कर सकेगा, ना अन्य शरीरों की सेवा में लगा सकेगा, उसके संग्रह और उसके लोभ में ग्रसित हो करके चित्त को अशुद्ध और मन को अशांत बना लेगा, ये रहस्य है। तो अनुभवी जन कहते हैं कि आप अपना मूल्यांकन सत्य के आधार पर कीजिए, आपके भीतर मृत्यु रहित जीवन की मांग है, आपके भीतर शुद्धि और शांति की मांग है, आपके भीतर प्रेम की सरसता की मांग है, तो आप अपना मूल्यांकन अपने जीवन के आधार पर कीजिए। वस्तुओं और व्यक्तियों की पराधीनता स्वीकार करेंगे, उनकी आसक्ति में फंसेंगे, वस्तुओं के लोभ में और व्यक्तियों के मोह में ग्रसित हो जाएंगे, तो चित्त और मन बिचारे ये अंश जो हैं, ये अवयव जो हैं, अशुद्ध हो जाएंगे, और इनकी अशुद्धि आपको ना कहीं दिन में चैन से रहने देगी, ना रात्रि में अच्छी तरह से सोने देगी। नहीं होता है, विविध प्रकार के स्वप्न बनते रहते हैं, और मैंने कितने अध्ययन किए इस प्रकार के उदाहरण, केस सब पढ़ने को मिलता था, पढ़ते थे बाद में भी, तो मैंने ऐसा पाया कि बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित बड़े विद्वान और अच्छे लोग जिन्होंने जीवन भर खूब कर्मठता पूर्वक काम किया, धन कमाया, यश कमाया और अच्छी तरह से खूब गतिशील रहे, और रिटायरमेंट के बाद कुछ दिनों तक घर में बैठने के बाद अब जब चाहते थे कि इस समय तो मुझे बहुत ही शांति मिलनी चाहिए, तो उनको मैंने आखिर समय तक के मस्तिष्क के स्नायु की दुर्बलता के कारण व्यर्थ चिंतन और अनर्गल स्वप्न का दुखड़ा ही सुनाते हुए पाया। आखिर समय तक होता है, जब जब कुछ कम उम्र रहती है 60 से पहले तो स्नायु पर अपना नियंत्रण चलता है, उसको व्यक्ति थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन संकल्प पूर्ति के फेर में पड़ने वाले और वस्तु और व्यक्ति के संयोग के सुख भोग की फेर में पड़ने वाले युवावस्था में ही शक्ति के रहते रहते ही इतनी अशुद्धि और इस प्रकार की गतिशीलता के शिकार हो जाते हैं कि बाद में सुख भोगने की सामर्थ्य भी नहीं रही और स्नायु पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य भी नहीं रही, तो भोग भी नहीं सकते हैं, चिंतन को छोड़ भी नहीं सकते हैं, परेशान हो जाते हैं। सब किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता है, लेकिन आपकी संस्कृति के निर्माण करने वाले मनीषियों की सूझबूझ देखिए, वे लोग कहां तक सोच सकते थे। तो ये एक पृष्ठभूमि ऐसी बनी रहती है कि नाशवान शक्तियों के नाश होने से पहले अविनाशी तत्वों पर दृष्टि चली जाती है, इसलिए यहाँ के लोग अधीर नहीं होते हैं। अधीर नहीं होते हैं, इससे भी अच्छी बात क्या है कि जैसे ही चौथेपन आने का समय होता है तो पुरुष भी स्त्री भी साधारण वर्ग के लोग भी सब प्रकार के लोग जो इस संस्कार से प्रभावित हैं, वे लोग सोचने लग जाते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, देख लिया संसार के खेल तमाशे हो गए, अब तो चौथापन आने लगा है, अब तो ये सब छोड़ छाड़ करके कुछ भगवत चिंतन करना चाहिए, कुछ सत्संग में रहना चाहिए, कुछ परोपकार में लगना चाहिए। तो इसका परिणाम क्या होता है कि नाशवान शक्तियों के नाश होने से पहले अविनाशी शक्तियों के विकास पर उनकी दृष्टि चली जाती है, तो आंखों की दृष्टि कम होने लगी, कि कान से कम सुनाई देने लगा, कि दांत झड़ने लगे, कि हाथ पांव दुर्बल होने लगे, तो इससे वे ज्यादा घबराते नहीं है, क्योंकि उनके उनके भजन का समय आ गया, प्रभु के आश्रित होने का समय आ गया, सुख भोग के त्याग का समय आ गया। तो यह तैयारी भारतवासियों की पृष्ठभूमि में इतनी अच्छी रहती है कि छूटने वाली चीजें छूटती जाएं, इससे वे अधीर नहीं होते, इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया के रोगी नहीं बनते। ये उदाहरण, यह रहस्य मैंने उन लोगों को बताया जो जो अध्ययन करने के लिए आए थे। मैं कहा रिसर्च करिएगा, आप लोग खोजते रहिएगा। तो आज अपने भाई बहनों के सामने यह तथ्य निवेदन करके मैं इस रहस्य को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वस्तुतः है मन और चित्त की अशुद्धि में हम ही सहायक होते हैं, तभी ये अशुद्ध होते हैं, अन्यथा प्रकृति का विधान है, वंशावली और परंपरा हेरिडिटी एनवायरमेंट के संबंध पर बड़ा बड़ा शोध कार्य हुआ है, खूब रिसर्च हुआ है, उसके सिद्धांत में हमने ये पढ़ा कि प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो सदैव ही शुद्धि की ओर चलती हैं। मैं अपनी ओर से अपनी भूल से ज्ञान का अनादर करके बल का दुरुपयोग करके यदि इन शक्तियों को अशुद्ध न बनाऊं तो ये अशुद्ध नहीं होते हैं। प्रारंभ से किसी को भी मन और चित्त अशुद्ध रूप में नहीं मिलता है, सब शुद्ध धातुओं से बने हुए अवयव ये हैं। अपनी भूल से अपने ज्ञान का अनादर करके अपने बल का दुरुपयोग करके मन और चित्त को हम अशुद्ध कर देते हैं, और मेरी भूल से जब इनमें विकृति पैदा हो जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर जब शांति की बात सूझती है जब साधना की बात सूझती है तब हम सोचने लगते हैं कि हम तो बहुत अच्छे, हम तो शांत ही रहना पसंद करते हैं और मन के व्यर्थ चिंतन को मिटा करके सार्थक भगवत चिंतन में लगाना चाहते हैं, लेकिन ये मन बड़ा खराब है कि मेरा कहना नहीं मानता है और व्यर्थ चिंतन को छोड़ करके सार्थक चिंतन में नहीं लगता है, ये कहना आरंभ करते हैं। ये बिल्कुल उल्टी बात है। चित्त शुद्धि पर एक पूरा ग्रंथ लिखवाया है स्वामी जी महाराज ने, काफी मोटी किताब है, पूरी किताब चित्त शुद्धि पर है। उसमें यह प्रसंग आया और मैंने तो व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखना और उसको एबनॉर्मलिटी से बचाना, ये सब तो पढ़ करके मैं आई थी, स्वामी जी महाराज को सुनाती रहती थी। तो महाराज जी ने उसमें जो सुझाव दिया है मुझे, उससे यह प्रकाश मिला कि प्राकृतिक शक्तियां स्वतः अपने आप में अशुद्ध होती ही नहीं है, मेरी भूल से उनमें अशुद्धि उत्पन्न होती है। हाँ ये है कि वो ऑपरेटर्स की तरह है, यंत्र की तरह है, पर्दा की तरह है जिस पर की अशुद्धियां दिखाई देने लगती हैं। तो दिखाई देने लगती हैं, इसी कारण से व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि मुझे तो भगवत चिंतन पसंद है और हम चाहते हैं कि भगवत चिंतन करें और ये मन इतना खराब है कि ये संसार के चिंतन में लगा रहता है। तो इस भूल को मिटा दीजिए, ये भ्रम छोड़ दीजिए, व्यर्थ चिंतन की उत्पत्ति मेरी भूल से हुई है और उसका मिटाना मेरा पुरुषार्थ है। तो अब तक जो हो चुका वो तो हो चुका, अब आगे से क्या करें, ऐसा सोचिए कि अब तक तो मैंने वस्तुओं को पसंद किया, व्यक्तियों को पसंद किया, परिस्थितियों को पसंद किया, उनका आश्रय लेकर अपने को निश्चिंत और निर्भय बनाना पसंद किया। तो जो स्व नहीं है, जो स्व में नहीं है, जो पर है, जिसका संयोग बना रह सकता ही नहीं, उसको पसंद करने का परिणाम तो होगा ही कि मन और चित्त दुर्बल हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। तो हो गया सो हो गया, अब उसका विवरण ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि अब बिगड़ी हुई चीज को संभालें कैसे। ठीक है जी, अब संभालना है। तो संभालने के लिए पहली बात यह रखनी होगी अपने सामने कि संयम और मर्यादा के साथ शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। शारीरिक भूख होती है अन्न, जल, सुरक्षा, हवा इत्यादि। मानसिक भूख होती है दुख सुख में भाग लेने वाले संगी साथी, मंडली चाहिए, दुख सुनने के लिए भी साथी चाहिए, सुख को बढ़ाने के लिए भी साथी चाहिए, ये सब मानसिक भूख होती है। तो इन बातों की पूर्ति में बहुत ही ज्ञान पूर्वक अपने लोगों को काम करना चाहिए। दूसरी बात हो जाएगी कि अब जो अशुद्धि और अशांति उत्पन्न हो गई है उसको मिटाने के लिए और ऊंचे स्तर से हम लोगों को साधना अपनानी पड़ेगी। ऊंचा स्तर का अर्थ क्या है कि आप दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन पर विचार करें। तो पहली बात हमारे सामने यह आती है कि ये जितने अवयव हैं, मन और चित्त, बुद्धि, इंद्रियां इत्यादि, ये सब के सब भौतिक तत्व हैं, शरीरों के कार्य है ना। कुछ स्थूल शरीर का कार्य है, कुछ सूक्ष्म शरीर का कार्य है, कुछ कारण शरीर का कार्य है। तो ये सब जो अवयव आपको मिले हैं, जिनकी अशुद्धि से बड़ी खिन्नता मालूम होती है, रात्रि में नींद नहीं आती, अनिद्रा का दोष हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है, भजन में रस नहीं आता है, समाधि नहीं लगती है, सब ले लीजिए, व्यवहारिक काम से लेकर के साधना की उपलब्धियों तक चले जाइए। मन और चित्त की अशुद्धि के कारण से व्यक्ति कहीं भी सफल नहीं हो रहा है। तो ये सब अवयव जो विकृत हो चुके हैं, और इनकी विकृति से ना मुझे संसार में सफलता मिल रही है और ना मुझे साधना में सफलता मिल रही है, तो इस दोष को मिटाने में इस दार्शनिक सत्य को हम सब लोग सामने रखेंगे। कौन सा दार्शनिक सत्य? कि ये सारे अवयव भौतिक तत्व से निर्मित हैं, इनका अलौकिक तत्व से अर्थात मेरे अपने स्व से कोई संबंध नहीं है, यह दार्शनिक सत्य है। आप अविनाशी तत्व से रचे हुए अविनाशी हैं, इसलिए आपको अविनाशी आनंद की मांग है, अविनाशी प्रेम रस की मधुरता की प्यास है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप मौलिक रूप से उसी तत्व से निर्मित हैं। संसार में रहने के लिए, संसार के काम आने के लिए प्रभु की रची हुई सृष्टि को अपनी सुंदरता से, अपनी उदारता से, अपनी सेवा और करुणा से, अपने प्रेम की मधुरता से सुंदर और सरस बनाने के लिए हम लोग आए। ये बात पसंद आती है? देख, आती है। हम इस सृष्टि में क्यों आए? इस भौतिक जगत से मुझे क्या लेना है? अविनाशी से रचे हुए अमर पद के अधिकारी आप हैं, अनंत प्रेम स्वरूप परमात्मा के प्रेम रस के पात्र आप हैं, आपको इस संसार से क्या लेना था? इस भौतिक जगत से आपका क्या मतलब था? जीवन के सत्य पर विचार करने से, अनुभवी संत की वाणी को सुनने से यह अर्थ निकलता है कि उन्होंने अपना ही प्रतिरूप, वेस्टर्न फिलोसफी में एक फिलोसफर का वचन मुझे याद आता है, जब तक उसमें उसने दो बातें बताई थी। पढ़ाई के दिनों में तो मैं बहुत तर्क करती थी, प्रश्न करती थी, आचार्य लोगों से स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन अब स्वीकार करती हूँ। उसका एक वाक्य ये है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। अपने यहाँ भी बाद में मैंने सुना, अपना ही प्रतिरूप देकर परमात्मा ने मनुष्य को बनाया। और दूसरा वाक्य उसने कहा जिस पर मेरा बड़ा विरोध था, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय गॉड, बेस्ट पॉसिबल। तो हम तो कहते कि ये तो वर्स्ट पॉसिबल है भाई, कौन हिसाब से उसने बेस्ट कह दिया। सब समय में आचार्य लोगों से प्रश्न करती रहती थी। वे लोग कहते थे, देवकी जी इम्तिहान पास करने के लिए हम लोग जो लेक्चर देते हैं नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, प्रश्न का उत्तर देकर पास कर जाइए, ये सब आप पीछे सोचते रहिएगा। तो बाद में मेरे ध्यान में आया कि सचमुच आप अमर पद के अधिकारी, अविनाशी तत्व से रचे हुए परम पवित्र प्रेम रस की मधुरता को पसंद करने वाला मानव हृदय, आपको इस भौतिक जगत से क्या लेना था, क्यों आए? तो ये भौतिक जगत भी उस अनंत तत्व का विस्तार है, उस अव्यक्त तत्व का व्यक्त स्वरूप है, और उसने अपनी ही प्रसन्नता से हम लोगों को इस दुनिया में भेजा और रखते हैं। किस लिए? कि आप अपनी ऊंचाई से, अपने औदार्य से, अपने सौजन्य से, अपनी सेवा और हृदय के प्रेम भाव से इस सृष्टि को सुंदर और सरस बनाइए। इसलिए हम आए, आ करके भूल हो गई। जिसको सेवा देने आए थे उसको अपनी खुराक बनाने लगे, परिणाम में मन और चित्त अशुद्ध हो गया। अब शुद्धि का प्रश्न आया है तो क्या साधन करें? तो सबसे पहला यह दार्शनिक सत्य स्वीकार करें कि मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियां, तीनों शरीर और समग्र जगत, दृश्य जगत जो दिखाई देता है, इससे मेरा त्रिकाल में भी नित्य संबंध नहीं है। माना हुआ है, मैंने मान लिया था, तो मान्यता के अनुरूप कर्तव्य करेंगे तो उस मान्यता से छूट जाएंगे, और मान्यता के अनुरूप सुख भोगना पसंद करेंगे तो उसकी आसक्ति में फंस जाएंगे। अब सोच लीजिएगा कि अपने को क्या करना है। ये फ्री चॉइस नहीं है कि जब जो जी में आया सो किया और जब आएगा जी में तो छोड़ देंगे, सो इतना सहज नहीं है। कुछ नहीं का इतना जबरदस्त प्रभाव है अपने पर, इतना आश्चर्य होता है मुझे, कभी कभी अपने पर तरस भी आती है, हाय रे मनुष्य कितनी जरा सी बात के लिए कैसे कठिन फंदे में फंस जाता है, तड़प तड़प के जीता है, कराह कराह के मरता है, बड़ा कष्ट होता है सोच करके। और फिर यदि सत्संग के प्रकाश में आपने जीवन के वैज्ञानिक सत्य को स्वीकार किया, दार्शनिक सत्य को स्वीकार किया, तो जिस मन और चित्त को मैंने अपनी भूल से विकृत बनाया था उसको शुद्ध कराने में जरा भी न बाधा मिलेगी न देर लगेगी। कैसे? आप इस सत्य को स्वीकार करिए कि तीनों शरीरों से त्रिकाल में भी मेरा नित्य संबंध नहीं है, नहीं है, लेकिन मालूम तो होता है कि है। अगर सर्दी लगे तो ऐसा लगता है कि इसको बचाना चाहिए, और गर्मी लगे तो ऐसा लगता है कि इसको ठंडक देनी चाहिए, मालूम तो होता है कि है। तो मालूम होता है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये प्राकृतिक तथ्य हैं, बन रहे हैं, बदल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, मिट रहे हैं, जब तक ये काम के लायक आपके पास रहे आप इनसे काम ले लीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। तो जैसे जैसे लिखने के लिए कलम उठा करके लिखना आरंभ करता है आदमी और लिखना खत्म हो जाता है तो उस कलम को कोई पकड़े नहीं रहता है, उसे रख दिया जाता है। ऐसे ही तीनों शरीरों से संसार की सेवा के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, अपने अपनी प्रियता के व्यवहार से उसको सरस बनाने के लिए जब जब कुछ करने का मौका आए तो शरीरों का साथ लेकर के काम कर लीजिए, और जब काम करने का पीरियड न रहे तो शरीरों के साथ मत रहिए, उनके चिंतन में मत फंसे रहिए, उनको पकड़े मत रहिए, उनमें अपने को पकड़ा के मत रखिए। कैसे होता है? तो इस सत्य को स्वीकार करने से बड़ी शक्ति मिलती है कि मेरा इन तीनों शरीरों से त्रिकाल में भी नित्य संबंध नहीं है। ऐसा सोच करके जब चुपचाप हो जाएंगे आप तो पुरानी विकृतियां सब सामने सामने आएंगी। आप आंख बंद करके बैठेंगे तो बाहर के दृश्य नहीं दिखाई देंगे, तो बाहर के दृश्यों का जो चित्र बना है भीतर, वो भीतर भीतर दिखता रहेगा। ऐसा होता है, स्वाभाविक है। तो चाहे दृश्य जगत बाहर में दिखाई दे और चाहे दृश्य जगत भीतर में दिखाई दे, उसमें आप अपने को फंसाइए मत, उससे मिलाइए मत। और ये जो मेरे पुरानी कृतियों का फल दिखाई दे रहा है, ये तो प्रकृति माता इसको साफ कर रही है, मुझको दिखा दिखा करके निकाल रही है, कूड़ा करकट बाहर जा रहा है। तो सच मानिए, यह एक ऐसा ऐसा अटूट सत्य है कि मस्तिष्क में उठने वाले व्यर्थ चिंतन से आप अपने को मिलाएंगे नहीं, उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे, उनको देखकर डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो वे चित्र आपकी शांति को भंग नहीं करेंगे। मस्तिष्क में पुराने चित्र मनुष्य की शांति को भंग नहीं करते हैं, उन चित्रों को देख करके आदमी हलचल में पड़ जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, क्षुब्ध हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि भूतकाल में किसी के साथ आपका कुछ खटपट हो गया, अनबन हो गया, बातचीत हो गई, झड़प हो गई, परिस्थिति खत्म हो गई, वो आदमी चला गया, अब उससे कोई संबंध नहीं है, और अब आप शांति संपादन के लिए अपनी स्वाभाविकता में ठहरने के लिए अकेले होकर बैठे हैं, और उस व्यक्ति का चित्र आ गया कि वो घटना याद आ गई, कि उसमें जो अपना अपमान हुआ था वो याद आ गया, तो संत जन कहते हैं कि वो बात तो बीत गई है ना, उसका चित्र जो तुम्हारे मस्तिष्क में अंकित था, वो विकृति, वो अशुद्धि प्रकृति माता साफ कर रही है। तो भीतर जो कूड़ा भरा था वो निकाल निकाल करके फेंकने से दिखता तो है ना, तो दिखाई देता है, तो तुम डरो मत। भूतकाल की बीती हुई घटनाओं को देखकर वर्तमान में इमोशनल मत हो जाओ, फिर उस बात को याद करके संवेग में मत आ जाओ। कह रहे उसने ऐसा कैसे किया था, ये किया था, वो किया था, तो ऐसे तो वो केवल एक एक मेमोरी चिन्ह है, एक एक इम्प्रेशन है, और अगर उसमें आप इमोशन जोड़ देंगे किसी प्रकार से, उसको देख करके दुखी हो जाएंगे, क्षुब्ध हो जाएंगे, तो वो भूतकाल की बीती हुई घटना भी आपके चित्त को विकृत करने के लिए वर्तमान में सजीव हो जाएगी। तो आप ही की सत्ता से मरी हुई बात फिर आप पर शासन करने लग जाएगी। तो दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है कि शरीरों से संबंध तोड़कर, इस बात को जान करके कि इनसे मेरा नित्य संबंध नहीं है, ऐसा मान करके चुपचाप शांत हो जाइए, और मस्तिष्क में अगर पुरानी बातों की याद आती है तो आएगी, चली जाएगी, आप शांत स्थिर अपनी जगह पर ज्यों के त्यों बने रहिए। थोड़े दिनों तक ये क्रम चलेगा, उसके बाद फिर ये सब समाप्त हो जाएगा। अगर नए नए सुख भोग की वासनाओं से नई नई विकृति चित्त में पैदा नहीं करेंगे हम, तो शांति काल में पुरानी विकृतियां निकल जाएंगी, खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बहुत आराम मिलता है। संत कबीर ने कहा है, मन थिर तन थिर वचन थिर सुरति निरति थिर होए, कहे कबीर वात क्षणक को कल्प न पावे कोई। एक क्षण की उस शांति का आनंद इतना गहरा होता है, उसमें भौतिक और अलौकिक दोनों प्रकार की शक्तियों का ऐसा विकास होता है कि जैसा अलौकिक जीवन का आनंद संसार की किसी प्रवृत्ति में कभी भी संभव नहीं है। आप चाहें तो प्रयोग करके देखिए। मैंने जब प्रयोग आरंभ किया और अंतर की बातों से बहुत परेशान रहती थी और शिकायत करती ही रहती थी, जैसे सभी लोग करते रहते हैं, सब सत्संगी भाई लोग ऐसे ही कहते ही रहते हैं, वैसे मैं भी कहती रहती थी, तो महाराज जी ने एक दिन कहा कि देखो, ये प्राकृतिक शक्तियां जो हैं, स्वभाव से तो शुद्ध ही मिली थी आपको, और आपने अपनी भूल से इन्हें विकृत बनाया, तो जब साधना आरंभ हुई, जब तुमने ऊंचा दृष्टिकोण लेकर के अमर जीवन से परम प्रेम से अपने को अभिन्न करने का क्रम आरंभ किया, तो तुम इनका मोह छोड़ दो, इन पर अपना अधिकार जमाना छोड़ दो, इनको शुद्ध और शांत होना ही चाहिए और मेरे करने से होना चाहिए, इस प्रकार का आग्रह छोड़ दो, तो क्या होगा कि जब तक तुमने इनको मेरा कहकर पकड़ रखा है, तुम्हारी ममता के भार से दबा हुआ यह चित्त, तुम्हारी ममता के भार से दबा हुआ यह मन स्वस्थ और शुद्ध नहीं होता है। तो ज्ञान के आधार पर तुम इनसे संबंध तोड़ लो तो प्रकृति की संपत्ति प्रकृति स्वयं सुधार लेगी, और ईश्वर विश्वास के आधार पर सबके सहित अपने को उस अनंत तत्व के समर्पित कर दो तो प्रभु की चीज प्रभु स्वयं सुधार लेंगे। कितनी अच्छी बात है। तो नई नई विकृति उसमें पैदा करते जाओ और अपनी ओर से उससे संघर्ष करते जाओ, तो जो मन और चित्त की अशांति और विकृतियों को बलपूर्वक रोक लेना पसंद करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। बल का प्रयोग यहाँ नहीं चलता है, यहाँ क्या चलता है कि ज्ञान पूर्वक उनसे असंग हो जाओ, नई विकृति और पैदा होने का चांस मत दीजिए, इतना पुरुषार्थ हम लोगों का है, और पुराना जो कुछ मैंने खराब करके रख दिया है वो स्वयं ही प्राकृतिक प्रक्रिया से अपने आप धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाता है। तो ज्ञान के आधार पर शरीरों से संबंध तोड़कर, ज्ञान के आधार पर भीतर और बाहर सब प्रकार के दृश्यों का एक ही वर्ग मानकर उनसे असंग हो जाना मन और चित्त की शुद्धि का साधन है। विश्वास के आधार पर सर्वसमर्थ प्रभु का आश्रय लेकर अपने सहित अपने पास अब तक जो कुछ था, जो कुछ मैंने अपना करके मान लिया था, वह सब कुछ उनके समर्पित कर देने पर साधक को अप्रयत्न होने का अवसर मिलता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सरस बात है। एक साधक महाराज जी के पास आए और उन्होंने कहा कि एक प्रश्न है मेरा, मुझे उत्तर दे दीजिए, मैं चला जाऊं। स्वामी जी महाराज ने प्रश्न पूछ लिया, उन्होंने बता दिया कि मैं यही पूछने आया हूं कि मस्तिष्क की जो अशांति है और चित्त के जो विकार हैं, वो पूरे के पूरे नाश होते हैं कि नहीं। दबाव डालने से, जोर डाल करके कंट्रोल करने से कम तो हो जाते हैं। आप लोग इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत से भाई बहन सज्जन कोटि के लोग हैं जो साधक और सिद्ध न होने पर भी मन और चित्त की अशांति और विकृति को कंट्रोल करके रखते हैं, थोड़ा बहुत नियंत्रण तो रखते ही हैं। और साधक कोटि के लोग और ज्यादा नियंत्रण उस पर रखते हैं, फिर भी पूरे का पूरा वो मिटता नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भैया सच्ची बात बताऊं मैं तुम्हें, ये समूल नष्ट होता है, ये पूरा का पूरा मिट जाता है और चित्त और मन पूरा का पूरा शुद्ध होता है। पहले अशुद्धि का नाश होगा, ये सब शुद्ध होंगे, फिर इनसे तुम्हारा तादात्म्य टूटेगा, तब नित्य तत्व से अभिन्नता होगी। ये तो अनिवार्य बात है, ये सारे स्टेप्स होना ही है। अब कैसे होता है, उपाय बताते समय महाराज जी ने उनको सुझाव दिया, ज्ञान के आधार पर इनसे तुम संबंध तोड़ो। और मेरी जो शिकायत थी, महाराज जी मेरा मन शांत नहीं होता, तो एक दिन भरी सभा में महाराज जी ने कह दिया, तुम्हारा मन और शांत हो जाए ये संभव नहीं है। तुम्हारा क्या बात हो गई, मन तो है प्राकृतिक तत्व, मेरा मेरा कह करके तुमने उसकी दुर्गति की, अब मेरा मेरा कह करके तुम शुद्ध करना चाहती हो, कभी नहीं होगा। क्या करें महाराज, ज्ञान के आधार पर उससे संबंध तोड़ो। ये तीनों शरीर और शरीरों सहित इनके सारे व्यापार, ये तुमसे भिन्न है, तुम्हारी जाति के नहीं है, तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे स्वस्वरूप में नहीं है, ठीक है। इसलिए तुम इनसे संबंध तोड़ो, तब ये शुद्ध होंगे। अथवा हृदय की भावुकता के आधार पर सहज विश्वास और सर्वसमर्थ की महिमा में निष्ठा के आधार पर ये सब सहित अपने को उनके समर्पित करके शांत हो जाओ। बिगाड़ दिया मैंने, कोई चिंता की बात नहीं। हम कितना बिगाड़ेंगे, उतना बिगाड़ हम कर ही नहीं सकते जितना सुधारने की शक्ति प्रभु की कृपा में है, उतना बिगाड़ हम नहीं कर सकते। उस महामहिम की महिमा अपरंपार है। इस समर्पण योग में सबसे बढ़िया बात है कि व्यक्ति बिल्कुल निरीह और अबोध बालक की तरह उस महामहिम, उस करुणामयी जगत जननी, उस करुणा सागर जगत पिता की गोद में छोड़ दे थोड़ी देर। पकड़े रहोगे, निरीक्षण करते रहोगे, इंट्रोस्पेक्शन करते रहोगे, तो कृपा शक्ति का कार्य जो है उसका पूरा लाभ अपने को नहीं मिलेगा। तो जो समर्पित होता है वह अपने कर्तापन को समर्पित करता है, अहम को समर्पित करता है, और इस प्रकार का समर्पण भाव जो है वो अगर दो चार मिनट के लिए भी आप अप्रयत्न हो करके उस कृपामयी गोद में विश्राम ले सके तो उतनी ही देर में इतना विकास होगा जितना वर्षों का अभ्यास फल नहीं देगा।